फल बताने का उद्देश्य ही ये है कि जो इस फल को चाहेगा वो कर्म करेगा। मीमांसा शास्त्र में जहां अधिकारी का विचार किया किसी कर्म को करने में अधिकृत कौन है, तो अर्थी समर्थ अप्रत्युदस्त। अर्थी जो उस फल को चाहता है तब फिर समर्थ है, जो उस कर्म को करने में सामर्थ्य वाला है। अगर सामर्थ्य है और उस फल को चाहता नहीं तो भी कर्म करेगा नहीं। हमारे पास लाखों रुपए है, हम पुत्रेष्टि यज्ञ कर सकते हैं, पर पहले ही 9 बेटे और 7 बेटियां हो चुकी हैं, तो सामर्थ्य तो है, पुत्रेष्टि कर तो सकते हैं, करेंगे थोड़ी। महीना भर से पानी जबरदस्त बरस रहा है, नदी नाले तालाब भर करके बाढ़ आ रही है। हमारे पास सामर्थ्य धन की तो है, लेकिन कारीरी याग करेंगे थोड़ी। कारीरी याग करने से वर्षा होती है, तो जब चारों तरफ बाढ़ आ रही है तो फिर वर्षा की तो इच्छा है नहीं, तो कारीरी याग भी नहीं करेंगे। अब यदि अर्थी है और सामर्थ्य नहीं है, संतति नहीं है, परंतु आगे पुत्रेष्टि यज्ञ करने की अपने पास सामर्थ्य ही नहीं है, तो भी कहां से करोगे। तो अर्थिता आवश्यक है। फिर प्रश्न उठता है कि यदि हमको लाभ और अलाभ नहीं चाहिए, जय और पराजय नहीं चाहिए, सुख और दुख नहीं चाहिए, तो हम करेंगे क्यों। तो नहीं करें, चुपचाप बैठे रहें। तो भगवान ने कहा ततो युद्धाय युज्यस्व। फिर भी कर्म करने में लगो, जो तुम्हारा कर्म है उसको करो। तो किस उद्देश्य से करना और किस उद्देश्य से नहीं करना, अनात्मा का लाभ और अलाभ होता है। अनात्मा की जय और पराजय होती है, अनात्मा से सुख और दुख होता है। आत्मा आनंद घन है, वहां न सुख दुख है। आत्मा अद्वितीय है, इसलिए जय और पराजय नहीं। आत्मा अपना स्वरूप है, इसलिए लाभ और अलाभ नहीं। सुख और दुख ये अनात्म पदार्थ की प्राप्ति या अनात्म पदार्थ के वियोग से होते हैं। उस आनंद घन के अंदर न सुख हो सकता है न दुख हो सकता है। सुख क्यों नहीं हो सकता, तो होने का मतलब होता है जो पहले नहीं है। तभी कहोगे ये हुआ, जो पहले से मौजूद है उसको तो हुआ नहीं कहोगे। आ आत्मा आनंद घन है, आनंद रूप है, इसलिए सुख होना संभव नहीं, क्योंकि हमेशा ही आनंद रूप है। और जो स्वयं आनंद रूप है उसके अंदर दुख होना तो कल्पनातीत है, सोच भी नहीं सकते। जैसे नमक की डली के अंदर कोई मिठास की कल्पना करे तो कहां से होगा। अतः आत्मा आनंद रूप होने से सुख दुख से रहित, आत्मा अपना स्वरूप है, कहीं बाहर से आने वाली चीज है नहीं, खुद हो तुम, इसलिए उसकी प्राप्ति भी नहीं हो सकती। जो चीज पहले न होवे उसी के बारे में कहा जाता है इसकी प्राप्ति हो गई, इसका लाभ हो गया। अपना स्वरूप होने के कारण उसका लाभ भी नहीं और अलाभ भी नहीं। अपने से दूर भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार अनात्मा को तुम वश में कर सकते हो अथवा अनात्मा तुम्हारे वश में न होवे। आत्मा तो तुम खुद हो, इसलिए न आत्मा तुम्हारे वश में, तुम यदि आत्मा से भिन्न हो तो वश हो गए। तो अद्वितीयता होने के कारण जय और पराजय भी नहीं। इतने पर भी यद्यपि आत्मा में यह सब संभव नहीं है, परंतु अज्ञान के कारण इसका तुमको पता नहीं है। अतः इन अनात्म पदार्थों के सुख दुख लाभ अलाभ जय पराजय के लिए नहीं, इन सब से रहित जो स्वरूप भूत अद्वितीय आनंद घन आत्मा है, केवल उसके उद्देश्य से काम सारे वही करने हैं। काम में फर्क नहीं है, परंतु उद्देश्य में फर्क है। तो ये दो माताएं, इन दो माताओं के अंदर उपमाता की चिंता छोड़ करके केवल माता की दृष्टि करनी है। अब जब माता की दृष्टि करते हैं तो सर्वकर्णानि संप्रतिष्ठाप्य ध्यानम विष्णुः, इंद्रियों को विषयों की तरफ दौड़ाना ये तो है अविद्या, और इंद्रियों को विषयों से हटा करके अपने स्वरूप में स्थित करना ये है विद्या। तो सर्वकर्णानि संप्रतिष्ठाप्य, सारी इंद्रियों को विषयों से हटा करके स्वरूप में स्थित करना, यही ध्यान है, यही विष्णु है। विष्णु क्यों कहा, तो पहले कह आए हैं ओंकार को विष्णु इसलिए कहा कि वह व्यापक है, विष्णु का अर्थ बतलाया था, सब इसमें प्रविष्ट होते हैं। इसी प्रकार से विषय इंद्रियों में प्रविष्ट होते हैं, अतः इंद्रियों से अतिरिक्त विषय है नहीं। इस इस प्रकार इंद्रियों के अंदर ही सारे विषय प्रतिष्ठित हैं, इस बात का निश्चय करने पर ही इंद्रियां अपनी चंचलता को छोड़ेंगी। वो जो चित्र द्वैत रसात्मक है, वो तो कहता है बाहर चीजें अनेक दिखेंगी, और विद्या ये बतलाएगी कि ये सारा भेद तो इंद्रिय निमित्त से होने के कारण इंद्रियों के अंदर ही प्रतिष्ठित है। तब फिर विषयों की तरफ जाना छूटता है। अभी हम समझते हैं चीजों से स्वाद आता है, बाद में पता चलता है स्वाद चीजों से नहीं आता, स्वाद तो जीव से आता है। इसलिए जब जीव को विषयों से हटा करके प्रतिष्ठित करते हैं तो दिव्य स्वाद का अनुभव होने लगता है। जिस स्वाद के सामने ये कोई स्वाद नहीं है, उस स्वाद की छाया विषय संबंध से हमको मिलती है। जब तक उसके स्वाद का पता नहीं, तभी तक विषयों के स्वाद में तुम जाते हो, ऐसे समझ लो। संसार में जो भी मीठी चीज है वो चीनी के डालने से मीठी हुई है। अब मान लो तुमने पहले दो मिश्री की डली खा ली, उसके बाद तुमको कैसा भी लड्डू गुलाब जामुन इमरती खिलाया जाए, हर बार तुमको लगेगा इसमें चीनी कम पड़ी है। क्योंकि जिस चीनी से दूसरी चीज मीठी हुई, उस चीनी का स्वाद जीभ पर चढ़ा हुआ है, तो दूसरी चीज फीकी लगनी ही है। ठीक इसी प्रकार से जीभ के अंदर जो उपस्थित स्वाद है, उसके कारण ही विषयों में स्वाद आता है। ठीक इसी प्रकार शब्दादि सब हैं, इसलिए चूंकि सारे इन पदार्थों का मूलभूत इंद्रिय है, इसलिए कहा सर्वकरणानि संप्रतिष्ठाप्य ध्यानम विष्णुः प्राणम मनसि सह करणैः मनसि संप्रतिष्ठाप्य। मन, इंद्रियां, इन सबको जब हम अपने कारण में प्रतिष्ठित कर देते हैं, क्योंकि मन के द्वारा ही ध्यान होता है, मन जब विषय रूप से ध्यान करता है तब तक द्वैत है, और जब मन को लीन कर दिया, मन का अलग रूप नहीं रह गया, मन लीन हो गया और इंद्रियों के साथ लीन हो गया, तब ध्याता रुद्रः। तब जो ध्यान करने वाला है वो रुद्र हो गया। ओंकार की रुद्र रूपता पहले बता ही दी थी, और जब नादान्ते परमात्मनि संप्रतिष्ठाप्य, नादांत जब मकार, उसके अंदर जब लीन कर देते हैं अर्थात जब वहां पर कारणता भी नहीं रहती है तो ध्यायित ईशानम प्रध्यायितव्यम तब वह ध्येय है। तो इस प्रकार से ओंकार की ज्ञेय रूपता कैसी निकलती है तो ध्याता ध्यान ध्येय तीनों त्रिपुटियां उसके अंदर एक हो जाती हैं। जब तक ध्याता ध्यान और ध्येय ये अलग अलग रहते हैं तब तक द्वैत प्रपंच है, और जब ये एक हो गया, जैसे जब तक अ उ म ऐसा तीनों अलग अलग दिखता है तब तक तो ओम नहीं है, और जब ओम हो गया तो उसके अंदर अ उ म ये नहीं रह करके एक अखंड ओम हो गया। उसमें अ उ म की कल्पना रहेगी, वस्तुतः तो ओम एक ही है। इसलिए आगे बतलाते हैं सर्वमिदं ब्रह्म विष्णु रुद्रेन्द्रास्ते संप्रसूयन्ते सर्वाणि चेन्द्रियाणि सहभूतैर्न कारणं कारणानां ध्याता कारणं तु ध्येयः सर्वैश्वर्य संपन्न सर्वेश्वर शंभुराकाश मध्ये ध्रुवं स्तब्ध्वाधिकं क्षणमेके कृतशतस्यापि चतुःसप्तत्यायत्फलं तदवाप्नोति कृष्णम् ओंकारगतिश्च सर्वध्यानयोगज्ञानानां यत्फलम् ओंकारो वेद पर ईशो वा शिव एको ध्येयः शिवंकरः सर्वम् अन्यत् परित्यज्य सर्वम् इदम्। ये सब कुछ जो नाम रूपात्मक प्रपंच है और इस नाम रूपात्मक प्रपंच को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, रक्षा करने वाले विष्णु, संहार करने वाले रुद्र, शासन करने वाले इंद्र, बहुवचन से अन्य सब देवताओं का संग्रह कर लेना तो ब्रह्म विष्णु रुद्र इंद्र ये सब संप्रसूयन्ते, ये सारे के सारे वह जो अखंड है जिससे ये त्रिपुटी उत्पन्न हुई उसी से ये सारा संसार और इसके रक्षा करने वाले देवता भी उसी से प्रकट होते हैं। कैसे तो सर्वाणि च इंद्रियाणि सहभूतैः, अपने दृष्टांत से देख लो, जब तुम गहरी नींद में थे तो वहां कुछ भी नहीं था। गहरी नींद में तुम अकेले ही तो थे, वहां तो कोई तुम्हारे साथ नहीं था ना। उस एक अकेले से ही जब तुम जागृत में आए तो आंख पैदा हो गई, कान पैदा हो गए, सारी इंद्रियां उत्पन्न हो गई, मन बुद्धि चित्त अहंकार वासनाएं कर्म सब उत्पन्न हो गए। किसमें से निकल के आए? तुम्हारे में से ही निकल के आए। जैसे ये सारे तुम्हारे में से निकल के आए वहां तुम अकेले थे, इसी प्रकार एक ओंकार में से अकार उकार मकार नाद इत्यादि निकल के आए, उसी प्रकार महाप्रलय में होने वाले जो ईशान थे, परमेश्वर थे, उनसे ही ये सारे देवता और ये सारा जगत निकल के आया। निकल के आया इसके अत्यंत छोटे से हिस्से में। एक बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, उनका नाम था नीलनगर। भगवान शंकर के बड़े भक्त थे। रोज प्रातः काल सवेरे उठ करके नहा धो करके भगवान शंकर का रुद्र मंत्रों के द्वारा विधि विधान से पूजन करते थे। पत्नी भी उनका सहयोग करती थी। हमारे यहां जितने भी शुभ कर्म हैं उसमें यजमान और यजमान पत्नी दोनों को मिलके करना पड़ता है। इसीलिए पति और पत्नी से रहित जो होते हैं विधुर और विधवा, वो श्रौत कर्मों के अधिकारी नहीं। दोनों मिलके ही करने का विधान है, उसी के अनुसार वो करते थे। करते करते बहुत समय हो गया। एक दिन जिस समय वो भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहे थे, वो श्रृंगार करने में लगे हुए थे, तब तक ऊपर से एक मकड़ी भगवान के शिवलिंग पर पड़ गई। मकड़ी के गिरते ही उनकी जो पत्नी थी उसने झट से फूंक मार करके मकड़ी को हटा दिया, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि मकड़ी को हाथ से खींच के नहीं हटाना चाहिए। इसका कुछ भौतिक कारण भी है। मकड़ी के जो पैर होते हैं उसके अंदर छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, उनके अंदर बड़ा जबरदस्त जहर होता है, उसके द्वारा ही मकड़ी कीट पतंगों को पकड़ती है। अतः यदि मकड़ी को तुम दबाओगे तो शरीर के ऊपर वो जो जहर की ग्रंथियां हैं उनका असर आ जाएगा, तरह तरह के चर्म रोग उसके अंदर हो जाते हैं। मोटी भाषा में कहीं कहीं कहते हैं मकड़ी मूत गई, कोई घाव हो जाता है तो पता लग जाता है। तो मूत्ती उत्ती नहीं है, वो जो उसके पैरों के अंदर जहर की ग्रंथियां हैं उनसे ही वो रस निकलता है, पक जाता है। अतः मकड़ी को न दबा करके फूंक से उड़ा दिया जाता है तो फिर वो मकड़ी दबती नहीं तो वो होता नहीं। तो ये उसका भौतिक कारण भी है और वैसे सामान्य रूप से ऐसा ही नियम भी है। तो उसने फूंक मारी, मकड़ी तो चली गई, उड़ गई। बेचारे पंडित जी ने अपनी दोनों आंखों को दोनों हाथों से बंद किया, हाय हाय क्या कर डाला, क्योंकि फूंक मारने में हमेशा भय होता है। मुंह के जो रस है वो कहीं भगवान के ऊपर न लग जाए। अतः बहुत सी जगह पर भगवान के लिए जब भोग बनाते हैं तो अपने मुंह के सामने पट्टी बांध लेते हैं कि धोखे से भी कोई बात करेंगे तो मुख से ठीवन निकल करके कहीं भगवान के भोग में न गिर जाए। इसलिए फूंक मारने की संभावना ही नहीं होनी चाहिए। परंतु ब्राह्मण की पत्नी उस समय इस विचार को करने की समय वाली नहीं थी, वो तो जैसे अपने बच्चे के सिर के ऊपर पड़े तो फूंक मार देती है, ऐसे ही उसने फूंक मार दिया। भगवान तो उसका भाव समझ गए परंतु बेचारे ब्राह्मण नहीं समझ पाए। अब वो अपनी पत्नी को डांटने लगे, तुमने क्या कर दिया। फिर से उन्होंने सारी शुद्धि की प्रक्रिया की, सारे मंत्रों को दोहराया, शुद्धि के मंत्रों को किया, पंचगव्य आदि किया, कुश स्नान आदि कराया, सब किया भगवान को शुद्ध करने के लिए। जब रात में सो रहे थे तो उनको स्वप्न में दिखा, जिस जगह पर फूंक मारी थी वहां पर तो कोई दाग नहीं था और बाकी सारे शरीर के अंदर घाव ही घाव हो गए थे। भगवान तो समझ गए थे कि देखो ये जिस भाव से कर रही है वो भाव कुछ और है। पंडित जी उस बात को नहीं समझ पाए थे। अब इसको देख करके उनको समझ आ गई, भगवान शंकर ने कहा कि विष्णु भगवान तो अवतार लेते रहते हैं तो उनकी तो कई माएं हैं, मेरे अनेक भक्त हुए परंतु अभी तक वो भक्त नहीं हुआ जो मुझे अपना बेटा समझता और अपने को मां समझता, इसलिए मुझे तो आज माता की प्राप्ति हो गई, क्योंकि माताएं झट से बच्चे का उड़ा देती है, वही उसको भाव था, मैंने नहीं उड़ाया तो इनके घाव हो जाएंगे। अब विचार करो, भगवान शंकर के ऊपर मकड़ी का पड़ना क्या है। जैसे मकड़ी के छह पैर हैं, ठीक उसी प्रकार से जो अविद्या का संपर्क भगवान के साथ परमेश्वर के ऊपर अविद्या का लांछन पड़ना है, वो अविद्या का लांछन छह पैरों वाला है। ये सारी सृष्टि छह चीजें हैं। पंच महाभूत अनात्मा, उन पंच महाभूतों से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। पंच महाभूतों के ही सत्वगुणांश से ज्ञानेन्द्रियां बन गई, अंतःकरण बन गया, उसी के रजोगुणांश से कर्म इंद्रियां बन गई, प्राण बन गया, उसी के तमोगुणांश से ये दिखने वाला जगत बन गया। तो पंच महाभूतों से ही ये सारी सृष्टि हुई है। अतः पांच पैर तो ये हो गए, छठा है इसके अंदर चेतन का संसर्गाध्यास।